ओम शांति। वर्तमान समय के कलुषित वातावरण में जीवन को सरल और सौहार्दपूर्ण तरीके से जीने के लिए परमपिता परमात्मा ने इस धरा पर एक बगिया बनाई और उसे विभिन्न पुष्पों एवं रत्नों से ईश्वरीय सुगंध फैलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प निर्धारित किए। इन्हीं पुष्प रत्नों में एक रत्न है आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी। हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं और आपने तभी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। लगभग 30 वर्षों से आप समर्पित हैं। आप मेडिकल विंग के भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर विंग की विशेष सेवाओं में विशेष सहयोग देते हैं। दिल्ली लॉरेंस रोड और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की सेवाओं के आप निमित्त हैं और आज हम आपसे सुनेंगे स्वमान में एकाग्रता और सर्वप्रति सम्मान। आदरणीय लक्ष्मी दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। निराकार परमपिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ विश्व का रचयिता त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी दिव्य बुद्धि का दाता वरदाता हम सब आत्माओं का प्यारा प्यारा पिता इस संगम युग पर हम बच्चों से मिलता है, अपना बच्चा बनाता है और बच्चा बना करके जो परमात्मा की महिमा है वो सारी की सारी महिमा स्वमान के रूप में हम बच्चों को देता है या नहीं देता है? देता है हा? शिव बाबा शांति का सागर तो हमें क्या बनाया? मास्टर शांति का सागर। शिव बाबा ज्ञान का सागर, हम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर नॉलेजफुल। वो वरदाता तो हमें भी क्या बनाता है? वरदाता, वरदानी मूरत बनाता है, महादानी मूरत बनाता है। संगम युग पर ही शिव बाबा सारे अपने ये जो टाइटल हैं, जो स्वमान है हमारे, वो हमें देता है। दुनिया में तो किसी को एक मेडल या एक टाइटल कोई विशेष मिल जाता है तो उसमें भी वो कितने खुश होते हैं। हम कभी कभी कहीं पर जाते हैं किन्हीं के पास मिलने के लिए, तो किसी की प्रधानमंत्री के साथ फोटो लगी हुई है, किसी के साथ सीएम के साथ मिलने गए तो उनकी फोटो लगी हुई है, कोई उनको शील्ड दे रहे हैं तो उनकी फोटो लगी हुई है, किसी ने विशेष कुछ उनके लिए लिखा है, पंक्तियां लिखी हैं तो उनकी फोटो लगी हुई है। लेकिन हमें स्वयं सृष्टि का रचयिता, नियंता, अपने ही मुखारविंद से, कितने स्वमानों से सुसज्जित करते हैं। कभी हम सोचें कि कितना बड़ा भाग्य है हमारा, कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा जो स्वयं भगवान बैठ करके हमारी पालना भी करता है, हमारा श्रृंगार करता है और हमको भी बाबा यही चाहता है कि जो मैंने समय प्रति समय स्वमान दिए हैं, बच्चे उन्हीं ज्ञान रत्नों में ही खेलते रहें, उन्हीं स्वमानों में ही पलते रहें। क्योंकि जितना हम स्वमान को धारण करते हैं उतना ही हमारा मन बुद्धि शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है, एकाग्रता की शक्ति आती है। और इसी स्वमान के आधार से मैंने अनुभव किया है कि हम बाबा के बहुत बहुत करीब का अनुभव करते हैं। आप सभी भी, मैं समझती हूं कि इन स्वमानों का अनुभव करते होंगे, जीवन में प्रैक्टिकल में लाते होंगे। लेकिन एक छोटी सी बात, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं कि एक स्वमान, मैं भगवान का बच्चा हूं। किसका बच्चा हूं? मैं भगवान का बच्चा हूं और भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पे, सभी हाथ रखें जरा, भगवान का, शिव बाबा का वरदान भरा हाथ मेरे सर पर है। और सोचें, सफलता हर कदम में मेरी हुई ही पड़ी है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सोचा सभी ने? देखो, इसको अगर आप सुबह सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करें और ये अनुभव करें कि बाबा का वरदान भरा हाथ मेरे सर पर है और मैं बाबा की गोद में हूं और मेरे हर कर्म में सफलता हुई ही पड़ी है, मैं विजयी रतन हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो देखो सारा दिन आपको ऐसे लगेगा जैसे हम वरदानों से पल रहे हैं, कितने हल्के हो गए हैं। और अगर आप इसका बार बार अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका आप स्वरूप बनते जाएंगे। जैसे एक संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, आप घूम रहे हैं, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप कोई कर्म कर रहे हैं, मान लो आपने सारे दिन में भी अगर एक स्वमान ले लिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं परम पूजनीय आत्मा हूं। वैसे लगेगा जैसे सारे दिन के लिए हमने एक मैचिंग सेट पहन लिया है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, चमकती हुई ज्योति हूं, मुझ आत्मा से रंग बिरंगी लाइट्स की किरणें निकल रही हैं। मैंने आज जो भी बोल बोलने हैं सबके साथ शुद्ध पवित्र और नपे तुले बोल बोलने हैं। मैंने आज जो भी सुनना है सिर्फ पवित्र बातें ही सुननी है, बाबा की बातें ही सुननी है। मैंने जो कर्म करने हैं आज इन हस्तों से, इन पांव से, बाबा के पवित्र कार्य के लिए ही ये हाथ चले, चाहे आप भोजन बना रहे हैं, चाहे ऑफिस में कंप्यूटर चला रहे हैं, पर एक स्मृति, वो स्मृति आपकी स्थिति बनाती जाएगी। और वो स्थिति जब आपकी बनती जाएगी तो आपको अपने आप को ही बहुत अच्छी एक फीलिंग आनी हो शुरू हो जाती है। फिर जहां भी आप खड़े होते हैं तो दूसरी आत्माओं को भी वैसी ही फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। वो खुद ब खुद अपने को महसूस करने लगते हैं कि आप कौन और हम कौन, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आपको भी ऐसे लगेगा कि हमारे शरीर से भी वो पवित्र वाइब्रेशंस निकल रही हैं, वो प्योर वाइब्रेशन चारों तरफ ऑरा के रूप में बनती जा रही हैं। तो एक एक स्वमान को जितना हम ऐसे, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी माला जप लेते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं ये जल्दी 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 माला की तरह जैसे मन का फेरना है। लेकिन नहीं, कुछ क्षण उसका अनुभव करो एकाग्र चित्त होकर के। तो जितनी आप एकाग्रता लाएंगे तो उतना ही आपका योग पावरफुल बनता चला जाएगा। योग में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी कभी कभी हमें योग में बड़ी मेहनत लगती है और कभी कभी तो ऐसा होता है इतने पुराने पुराने भी हो जाते हैं ज्ञान में तो भी क्या कहते हैं, हमें ये बता दो योग कैसे लगाएं। तो जितना हमारा ये स्वमान का अभ्यास, स्वमान में भी एकाग्रता का अभ्यास किया हुआ होगा तो योग ऑटोमेटिकली नेचुरल रूप से लगेगा। हाँ, जैसे आप सबको मालूम ही है कि जितनी कंसंट्रेशन लेंस पर सूर्य की किरणों की उतनी ही ज्वलनशीलता उसकी बढ़ती है। इसलिए क्या दिखाते हैं कि पेपर तभी जलता है जब सूर्य की जो किरणें हैं वो कंसंट्रेटेड होती हैं, एकाग्र होती हैं। तो इसी तरह से हमारा भी मन बुद्धि जितना एकाग्र होता है, जैसे अभी अभी अपनी बहन जी बता रही थी कि किस तरह से ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट के दिनों में कैसा योग किया। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नहीं, बाबा से नजर हट ही नहीं रही। तो जब हमारा मन बुद्धि बाबा में इतना एकाग्र होता है तभी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, हम अधिक से अधिक शक्तियां ग्रहण कर पाते हैं और अपने जीवन में जो हमारे व्यवहार में बातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उन पर हम विनोवर कर सकते हैं। संबंधों में बड़ा अच्छा हमारा तालमेल बनता है, जितना हमारा स्वमान, क्योंकि स्वमान का अर्थ ही है स्वयं को मान देना। हमने ये देखा है कि कई बारी जब हम नए नए ज्ञान में चलते हैं, कोई कोई आत्माएं नई नई ज्ञान में चलती हैं और बाबा हमें स्वमान देते हैं, लेकिन उन आत्माओं को आत्मसात नहीं हो पाते हैं वो स्वमान। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं आप ही पूजनीय देवी देवता हो, आप अपने स्वमान का वो स्वरूप सामने लाओ, देवी के रूप में कोई भी अपना एक देवी का रूप या देवता का रूप, इष्ट देव का रूप, कोई भी अपना एक सामने लाओ कि मुझे ये बनना है। अब बाबा कहता है लेकिन वो नए नए होने के कारण वो उसको इतना आत्मसात नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बाबा की मुरलियां पढ़ते हैं, अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं, उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लेते हैं, तब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं कि जो बाबा ने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, सुख स्वरूप, ये तो कर लेते, लेकिन उससे ऊंचे जो हमारे स्वमान है, मैं परम पूजनीय परम पवित्र आत्मा हूं, मैं देव कुल की ऊंची आत्मा हूं, तो वो जो स्वमान है वो तब हम कर पाते हैं जब हम रोजाना उसका अभ्यास करते हैं, उस पर अपना फोकस रखते हैं कि मुझे ये बनना है। और संगम युग को ही ये वरदान है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। समय को वरदान है, युग को वरदान है, और बाबा के बोल तो हमारे वरदानी है ही। आप कभी दादियों से मिलते हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ वरदान मिलते हैं, कोई त्योहार होते हैं तब भी आपको ब्लेसिंग कार्ड मिलते हैं, तो मैं तो ये भी कहती हूँ समय प्रति समय हमको बाबा से बहुत सारे वरदान मिले हैं। कुछ वरदान आपको नए साल पे मिलते हैं, दिवाली पे मिलते हैं, राखी पे मिलते हैं, कोई भी कुछ एक विशेष स्वमान वरदान आप अपने जीवन में ले लो। हाँ, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब बाबा ओम शांति भवन में मिलते थे तब तो एक एक से बाबा का मिलन होता था, एक एक को बाबा वरदान देते थे, तो वो कुछ वरदान मैंने स्वमान के रूप में अपने पास रखे हुए हैं। अपने पास माना वैसे नहीं रखे हुए लेकिन बुद्धि में रखे हुए हैं। जैसे बाबा ने मुझे कहा बच्ची सदा संतुष्ट मणि हो, सदा संतुष्ट रहोगी औरों को भी सदा संतुष्ट करोगी। एक बार बाबा ने कहा बच्ची सदा उड़ती कला वाली आत्मा हो, उड़ती रहोगी उड़ाती रहोगी। अब कुछ जीवन में जब भी कोई परिस्थितियां आती हैं तो क्या आता है, मैं तो उड़ती कला वाली आत्मा हूं, ये परिस्थिति तो छोटी है। हाँ, जैसे अभी गीत भी आया ना एक, हाँ, कि मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हाँ, गीत आया, सभी ने सुना है। हाँ, तो ऐसे ही जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो कितनी भी परिस्थितियां हों, कितने भी विकराल रूप की हो, लेकिन अनुभव मेरा ये कहता है कि वो परिस्थितियां ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती हैं और हम उस स्वमान के अभ्यास से उन परिस्थितियों को बहुत इजी सरल तरीके से पार कर लेते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जो स्वमान का अभ्यास करते हैं वो कभी भी परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि स्वमान का अभ्यास, स्वमान दिया किसने है और कितना ऊंचे ते ऊंचा स्वमान दिया है बाबा ने हमें। भक्ति मार्ग में तो हम शायद कहते होंगे वर दे दे, वरा दिए वर दातिए, एक वरदान पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते थे, और यहां बाबा ने आकर के क्या कहा कि बच्चे आप ही दूसरों को वर देने वाले हो। क्या कह दिया, आप ही सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, काम धेनु हो। कितने सुंदर सुंदर बाबा ने वरदान दिए हैं। आप इस ड्रामा के हीरो पार्ट धारी आत्मा हो। अब हीरो माना क्या होता है, हीरो के आगे ही बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन विजय किसकी होती है, किसकी होती है, हीरो की होती है। हाँ, तो कैसी भी परिस्थिति आएगी तो स्वमान हमें क्या याद दिलाता है, विजय हमारी निश्चित है, हम इस सृष्टि के हीरो पार्टधारी हैं, हमारे इर्द गिर्द पूरा ड्रामा चल रहा है, सृष्टि का नाटक चल रहा है, हम हीरा बनने वाले हैं। तो एक एक स्वमान को जितना जितना हम अभ्यास करते हैं एकाग्रता से, तो ऐसा लगता है कि हमारा एक इंटरनल पावर का स्टॉक जमा हो रहा है, विशेष शक्तियां हमारे में भरती जा रही हैं। तो जितना जितना हम इसका अभ्यास करते जाते हैं, योग सरल बनता जाता है और आपसी हमारे संबंध जो है इतने सुमधुर हो जाते हैं, किसी ने कोई गलती की, कुछ भूल हुई, कुछ कहा, ठीक है, इनका अपना पार्ट है, हल्कापन, सदा लाइट, डबल लाइट आत्मा हूं, मन से हल्के, विचारों से हल्के, और आत्मा है ही लाइट स्वरूप, कोई नहीं, इनका पार्ट है, और हम बड़े हो जाते हैं। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर कंपैरिजन करने की भावना भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें समझ मिल गई है कि हरेक आत्मा बहुत बहुत विशेष है और हरेक आत्मा का संस्कार अपना अपना है, स्वभाव अपना अपना है, एक दूसरे से स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब समझ आ जाती है तो हमारा उनके प्रति रिगार्ड और बढ़ जाता है। इनमें भी ये विशेषता है, इसीलिए बाबा ने इनको चुना है, इनके अंदर ये विशेषता है इसीलिए बाबा ने, क्योंकि बाबा ने तो अपना नया संसार बनाना है हम बच्चों के सहयोग से, और उसने लिया क्या है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो भगवान ने अपना कुनबा जोड़ना है तो भिन्न भिन्न संस्कार वाली आत्माएं तो होंगी ही, और भिन्नता में ही अच्छा भी लगता है। अगर एक फिल्म में सबका रोल एक ही जैसा हो, सब एक ही जैसे डायलॉग बोले और एक ही जैसा सब कुछ करें तो मजा आएगा, नहीं आ सकता है ना। वैरायटी में ही मजा है। जब हमें खाने की वैरायटी चाहिए, रोज कुछ ना कुछ भिन्नता चाहिए, तो संस्कारों की वैरायटी से हम क्यों नहीं आत्मसात करें। तो इसीलिए जितना जितना ज्ञान को हम जीवन में अपनाते जाते हैं, तो हम सरल चित बनते जाते हैं, और सरल चित बनने से हमारा स्वभाव बहुत सुमधुर हो जाता है, और हमें ये पता चल जाता है कि हर एक आत्मा विशेष है। तो हम विशेषता के दृष्टिकोण से जब उन्हें देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल से उनके प्रति रिस्पेक्ट और रिगार्ड निकलता है, और हर एक के कार्य के प्रति एप्रिसिएशन भी निकलती है कि कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कार्य छोटा है या बड़ा है। भगवान के कार्य में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। हो सकता है मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं तो मुझे उतना बड़ा ना दिखाए, लेकिन जो बाबा ने ज्ञान दिया है और बाबा के हिसाब से उनका कार्य बहुत विशेष है, क्योंकि भगवान की सिलेक्शन, बाबा की सिलेक्शन कभी भी ऑर्डिनरी नहीं हो सकती है। हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने चुना है, अपने विशेष कार्य के लिए चुना है, क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। हो सकता है कोई ज्ञान में बड़े हो सकता है कोई योग में बड़े हो सकता है किसी आत्मा का धारणा मूर्त जीवन बहुत श्रेष्ठ हो, कोई अपने जीवन में पोस्ट से बड़े हैं। तो जब ये समझ आ जाती है, तो हर एक का रिगार्ड ऑटोमेटिकली दिल से निकलता है, सर्व के प्रति सम्मान की भावना बनती है, और संगम युग पर ही ये सम्मान की भावना जब हमारे अंदर कूट कूट के भर जाती है, तभी वो संस्कार बनते हैं, और वो संस्कार परिवर्तन होने से हमारे संसार परिवर्तन होता है, और वो नए संसार में भी हम एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट और रिगार्ड देंगे। अगर आज के युग में भी सीरियल में भी देखो, जो धार्मिक सीरियल दिखाए हैं, चाहे महाभारत का चाहे रामायण का, तो कितने रिस्पेक्ट और रिगार्ड से वो एक दूसरे को बुलाते हैं, तात श्री, भ्राता श्री, माता श्री, कितना रिगार्ड है। तो ये रिगार्ड के संस्कार कहां भरे होंगे, कहां भरे हैं, इसी संगम युग पे, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग कहां चल रही है, सारे ड्रामा की 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कहां हो रही है, संगम युग पर, सारी रिहर्सल यहां पर ही हो रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आप विश्व की स्टेज पर हो, जो भी कर्म आप कर रहे हो क्या समझ करके करो, मैं विश्व की स्टेज पर हूं, विश्व की हीरो हीरोइन हूं, हीरो पार्टधारी हूं, और विश्व की स्टेज पर हूं। चाहे हम घर में एक झाड़ू लगा रहे हो, पर मैं कहां पर हूं। स्टेज पर अगर किसी को रोल दिया जाए नाटक में कि आपको झाड़ू लगाना है, तो भी कितने कॉन्शियस होकर के लगाएंगे। अगर किसी को कहा जाए कि आपको यहां पर सोना है स्टेज पर, तो भी कितने कॉन्शियस होकर के सोएंगे। तो ऐसे ही सारा दिन कर्म करते हुए मैं विश्व की स्टेज पर हूं, सारा विश्व मुझे देख रहा है। तो हमारे एक एक कर्म पर भी अटेंशन जाता है, तो जितने हम स्वमान में रहेंगे तो अंत में भी जब हमारा फाइनल पेपर होगा तो भी ये स्वमान की एकाग्रता ही हमें काम आएगी। समझते हैं? कौन कौन समझते हैं कि स्वमान की एकाग्रता काम आएगी लास्ट में? हाथ खड़ा करो जरा, सभी अलर्ट होकर के बैठे। ये स्वमान की एकाग्रता लास्ट में हमें पांचवी डोनर बनाएगी, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास उस समय एक सेकेंड में हमें पांचवी डोनर करा सकेगा। नहीं तो मन तो इधर उधर जल्दी जल्दी भागता है, और जहां एकाग्रता नहीं होती है वहां आधे से ज्यादा चीज अंदर जाती भी नहीं है। हम एक मुरली में भी देखें कि अगर हमारी एकाग्रता नहीं है पढ़ने में सुनने में, तो भी ऐसे लगता है जैसे मुरली ऊपर से चली गई है। और जिस दिन हम एकाग्रता से सुनते हैं तो ऐसे लगता है मुरली अंदर छप गई है। तो इसीलिए हमें ये बहुत काल का अभ्यास, मैं कौन सी आत्मा हूं, किसने मुझे चुना है, किस कार्य के लिए चुना है मेरा ये जीवन, श्रेष्ठ जीवन है। 84 जन्मों में यही श्रेष्ठ जीवन, क्योंकि हम इस जीवन में ब्राह्मण बने हैं, ईश्वरीय संतान बने हैं, क्योंकि ये बाबा के जो महिमा के स्वमान है जो हमें इसी समय मिलते हैं, सारे कल्प में नहीं मिलेंगे। देवी देवताओं के बच्चे, देवी देवताओं का ही सरनेम मिलेगा, लेकिन इस संगम युग पर मैं तो कभी कभी बाबा से बहुत रू रूहान करती हूं कि बाबा कितना सुंदर हमारा आपने ये पार्ट फिक्स किया है इस संगम पे, कि हम सारा कल्प कितने स्वमान में रहेंगे, कितने श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि इसी जन्म के पुरुषार्थ के आधार से सत्युग और त्रेता में हमको बाबा कहते हैं मर्तबा मिलने वाला है, पोस्ट पोजीशन मिलने वाली है। और इस समय जो हम इतना सुंदर अपना स्वमान का अभ्यास करते हैं, जैसे मैंने कहा देव स्वरूप का, देवी स्वरूप का, तो बाबा इस समय की हमारी जो स्वमान की एकाग्रता और उससे जो हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप बनता जाएगा, वो इस समय भी बाबा हमारा वो स्वरूप सेवा में ले सकता है। मान लो किसी को साक्षात्कार कराना है, किसी को स्वप्न में दिखाना है, तो वो हमारा स्वमान ही स्वरूप बनाएगा और वो स्वरूप से बाबा सेवा कराएगा। और द्वापर युग में भी हमारा उसी स्वरूप से ही भक्तों को साक्षात्कार कराएगा। इसीलिए जितने भी ज्यादा द्वापर युग में मंदिर बने हैं उसका आधार किसी ना किसी को साक्षात्कार हुए और उन्होंने वहां मूर्तियां और मंदिर बनाए। तो हमारा इस समय का स्वमान बहुत ऊंचा है। तो स्वमान में एकाग्रता, एक बारी की बात मैं आपको सुनाती हूँ कि एक राजा अपने वजीर को कहता है कि ऐसे तो तुम मुझे पहचानते हो, क्या मैं कभी टेस्ट लूं तब भी तुम मुझे पहचान लोगे? तो कहा, कोशिश करूंगा, पूरी तरह पहचान लूंगा। तो राजा ने क्या किया, अपने जैसी मिलती जुलती शक्ल वाले 10 लोग तैयार किए और उनका श्रृंगार और ड्रेस सबकी एक जैसी थी, एक जैसा, और सबको सिंहासन पर बिठाया। सबकी ड्रेस भी एक जैसी, सबके मुकुट भी एक जैसे, सबका श्रृंगार भी एक जैसा। तो उस वजीर ने सबको देखा और फिर आकर के राजा पर हाथ रख दिया। यही उसका टेस्ट था। तो राजा ने उससे पूछा, क्या आपने कैसे पहचाना कि यही असली राजा है? तो कहा, जिन्होंने ड्रेसेस वगैरह पहनी हुई थी ना, राजा के रूप में तो बैठे थे लेकिन उनकी आंखें इधर उधर हो रही थी, वो इधर उधर देख रहे थे, और राजन जो आप थे ना, आपकी आईज एकदम कंसंट्रेटेड थी, एकाग्र थी। तो मैंने झट से पहचान लिया कि ये हमारा राजा है। तो ऐसे ही अंत काल में भी बहुत सारे पेपर्स आएंगे, बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी, पांचों तत्वों के भी पेपर आएंगे, परिवार जनों की भी परिस्थितियां आएंगी, पेपर आएंगे, तब हमारा मन कितना एकाग्र हो पाता है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास जो है वो बहुत मदद करता है। इसीलिए योग में भी हम विशेष अभ्यास करें कि मन को इधर उधर जाने ना दें। और एटलीस्ट जब हम अभी जनवरी मास में बाबा से मिलने आए हैं और विशेष अव्यक्त मास है, और मैं तो ऐसा समझती हूँ ये दिल्ली वालों को पहली बारी चांस मिला है 18 जनवरी पे बाबा के यहाँ पर आकर सेवा करने का, तो बहुत सुंदर ये हमको मौका मिला है। यहाँ हम अपने स्वमान की स्थिति में रहे, 3 दिन है, 5 दिन है, 8 दिन है, जितने भी दिन हम यहाँ पर हैं, तो ऐसे लगे हम चल रहे हैं तो माना एक फरिश्ता चल रहा है। ऐसे नहीं जोर जोर से आवाज दे रहे हैं, जोर जोर से बात कर रहे हैं, नहीं, लगे कि हम अपने स्वमान में कैसे चल रहे हैं, हम अपने स्वमान में स्थित हो करके कैसे भोजन कर रहे हैं। अव्यक्त स्थिति हम यहाँ पर ही अपनी एक हफ्ता बना करके जाएं, जो ये हमें सप्ताह की स्थिति मिलेगी यहाँ पर, उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि पूरा वर्ष आपकी स्थिति पर रहेगा, क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ बाबा के घर में हम ये अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर हमें संग भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। सेवा तो एक खेल मिला हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्व सेवा इतनी अच्छी कर लें, ये स्वमान का अभ्यास, चाहे एक घंटा कोई अभ्यास करें, आधा घंटा करें, या पूरे दिन के लिए एक अभ्यास कर लें, जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन ये स्वमान में हमें टिकना आ जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चलें अपने परम धाम की ओर, और शिव बाबा से मैं ऐसी शक्तिशाली किरणें ले रही हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। इतना सुंदर अभ्यास जब आप करेंगे तो आपके हर कर्म पर उसका इफेक्ट आएगा, हर कर्म पर। करेंगे यहाँ पर सभी करेंगे हा? तो एकदम शांतिवन पूरा अव्यक्त धाम नजर आएगा, सूक्ष्म लोक नजर आएगा। एक एक कर्म करते हुए आज मैंने क्या सोचा है, आज मैंने क्या लिया है, एक एक स्वमान को थोड़ा सा और कंसंट्रेट करें, और कंसंट्रेट हा? तो देखो बाबा की कितनी सुंदर सुंदर अनुभूतियां आपको होंगी। तो जब आप घर में भी जाएंगे तो घर में भी अभ्यास जो है वो एक बहुत सुंदर वातावरण क्रिएट करेगा। इसलिए जब हम यहाँ माउंट आबू से जाते हैं, मधुबन से जाते हैं, तो बहुत एक आपका चेहरा चेंज हो करके जाता है यहाँ से। लेकिन वो अभ्यास कुछ दिनों तक रहता है, फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं। लेकिन इस बारी हमने ये अभ्यास करना है कि ऐसा ये स्वमान का अभ्यास हम यहाँ से करते चलें कि घर में भी ऐसा सुंदर वातावरण, कि घर में भी एक फरिश्ता घूम रहा है, एक देवी घूम रही है, एक देवता घूम रहा है, आपके साथ साथ सभी परिवार जन भी अनुभव करेंगे। और इसके साथ साथ रोज अपने घर में बाबा का रोज आह्वान करना। कौन कौन चाहते हैं बाबा हमारे घर में आए? सभी चाहते हैं? चाहते हैं? चलें बाबा को आज अपने घर लाएं। हाँ? कैसे अभ्यास करना घर में जाकर के भी? देखो आपके घर का वातावरण कितना शुद्ध और श्रेष्ठ बनता जाएगा। हर आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में है वो भी बहुत सुंदर विचारों से भरपूर होती जाएगी। थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं बाबा को कैसे आह्वान करें। ठीक है, सभी ने हाथ उठाया ना, तभी हम बाबा को अपने घर में बुलाने का अभ्यास कैसे करना है। रोज आना, एक बारी या दो बारी जरूर ये अभ्यास करना। मस्तक के बीच चमकती हुई मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। मैं शरीर में कुछ महान कार्य करने के लिए बैठी हुई हूँ। चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा, इस शरीर से डिटैच होकर के धीरे धीरे हॉल से बाहर ऊपर की ओर चलती हूँ। देखें अपने चमकते हुए सितारे को, मन और बुद्धि से देखते रहें। धीरे धीरे हीरे के समान चमकता हुआ सितारा ऊपर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे और ऊपर और ऊपर, बादलों के पास, बादलों को पार करता हुआ, आसमान से पार, नक्षत्रों से भी पार, चमकता हुआ सितारा, गोल गोल घूमता हुआ परम धाम उस लाल ज्योति के देश में पहुंच गया है, जहां चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है, जहां अपार शांति है। बिल्कुल शांति, गहन शांति में आत्मा चमकता हुआ सितारा मुझ आत्मा के समक्ष, अति चमकता हुआ सितारा शिव बाबा है। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, इस संगम युग पर आपने अपनी महिमा के सारे के सारे विशेषताओं भरे बोल, गुणों संपन्न सारी महिमा का मुझे मास्टर बना दिया। आप सर्वशक्तिवान, मैं आपकी बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान, सारी शक्तियां, सारे गुण, सारे खजाने बाबा आपने मुझे संगम पर दिए हैं। कितना सुंदर मेरा ये भाग्य है। बाबा, कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं मैं। बाबा, पर आज आपको मेरे साथ चलना है। बाबा और मैं, हम दो सितारे परम धाम से चमकते हुए दो सितारे धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा की भरकुटी के बीच में और मैं आत्मा एक फरिश्ते के रूप में, अब बाप दादा और मैं दोनों फरिश्ते के रूप में आमने सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बहुत शक्तिशाली दृष्टि। उस दृष्टि में सारी शक्तियां समाई हुई हैं, अपनी सारी विशेषताएं, सब गुण बाबा उस दृष्टि में मुझे दे रहे हैं। मैं आत्मा शक्ति संपन्न बनती जा रही हूं। अब बाबा ने अपना राइट हैंड उठाकर मेरे सर पर रखा और इस हाथ से सारी शक्तियां मेरे अंग अंग में समा गई। बाबा और हम आमने सामने, अब बाबा का हाथ पकड़कर मैं चलती हूँ और बाबा से कह रही हूँ, बाबा आज आपको हमारे घर भी पहुंचना है, मेरे साथ चलना है। देखो बाबा हाँ में सिर हिला रहे हैं और बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं। चलते चलते हम दोनों धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से दो फरिश्ते नीचे की ओर आ रहे हैं। दो फरिश्ते आसमान से नीचे, बादलों से नीचे धीरे 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 और नीचे और नीचे और नीचे आते हुए बाबा हमारे घर के बाहर खड़े हैं और मैं अपने घर की दहलीज पर हूँ। मैं बाबा को बहुत प्यार से अपने घर में लेकर के आ रही हूँ, अंगुली पकड़ करके धीरे धीरे बाबा को एक एक कमरे में लेकर के जाती हूँ। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि पूरे घर में फैलती जा रही है। पूरे घर में बाबा ने चक्कर लगाया, अब बाबा मेरे साथ भंडारे में भी आए हैं। भंडारे में भी बाबा एक एक चीज पर दृष्टि डाल रहे हैं। सारा वातावरण एकदम शुद्ध पवित्र बन गया है। अब बाबा को मैं बहुत सुंदर एक सफेद चादर बिछा करके सोफे पर बिठाती हूँ और बाबा से कहती हूँ, बाबा इस घर की एक एक आत्मा पर आप दृष्टि डाल दो, सबको शक्तिशाली बना दो। ये सब आत्माएं शक्तिशाली बने, पवित्र बने, शुद्ध बने, शांत बने और बाबा सबको दृष्टि देते हुए सब में शक्तियां भर रहे हैं और एकदम हमारा घर पवित्र मंदिर की तरह बन गया है। बाबा ने एक एक फल सभी को दिया और धीरे धीरे बाबा फिर से शक्तियां डालते हुए उठे और वापस घर के बाहर, और मैं घर के गेट पर खड़ी हूँ। बाबा मुझे भी पावरफुल दृष्टि देते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर जा रहे हैं। फरिश्ता उड़ता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बादलों से ओझल हो गए, आसमान से ओझल हो गए और मैं वापस तभी मुझे इस घर को भी मंदिर बनाना है, इसमें अपने स्वमान को साथ लेकर के प्रतिदिन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भरने के, ताकि ये घर मंदिर बने। अभी एक गीत बजेगा, हम सभी योग में बैठे रहेंगे। आपके एक एक संकल्प से आपका शुद्धिकरण और आपका संसार भी वैसा ही बन रहा है।
Oh. तेरी पास।